पृष्ठ संख्या 123, अध्याय 8, उपसंहार। इस शोध प्रबंध के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार संगीत की शिक्षा शुरू हुई और किस प्रकार धीरे धीरे समय के साथ साथ संगीत शिक्षण में परिवर्तन आते गए। वर्तमान काल में शास्त्रीय संगीत शिक्षण संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं आदि में माध्यम से जनसाधारण में लोकप्रिय हो रहा है। इसके माध्यम से शास्त्रीय संगीत को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान ही नहीं दिलाया, अपितु शास्त्रीय संगीत को सीखने के इच्छुक व्यक्तियों तथा प्रतिभाशाली युवक युवतियों को सीखने की सुविधाएं भी प्रदान की हैं। एक युग था जब शास्त्रीय संगीत कुछ संगीतकारों की निजी संपत्ति बन गया था और जिसमें अनेक कुरीतियां प्रवेश कर चुकी थीं, किंतु आज वह अन्य विषय के समाज में सम्मान की ही दृष्टि से देखा जाने लगा है। निसंदेह हमारी शिक्षण संस्थाओं ने सामूहिक शिक्षण के माध्यम से शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार की दृष्टि से सराहनीय कार्य किया है। विद्वान लेखकों, आलोचकों तथा शोधकर्ताओं ने शास्त्रीय संगीत के सैद्धांतिक पक्ष के महत्व को शिक्षित वर्ग के समक्ष लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। प्रतिवर्ष अनेकों विद्यार्थी उपाधियां प्राप्त कर रहे हैं। इन सब वर्तमान परिस्थितियों का शिक्षण संस्थाओं के संदर्भ में मूल्यांकन करने का शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हमारी शिक्षण संस्थाएं संगीत के प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय कार्य तो कर रही हैं, परंतु गुणवत्ता और परिपक्वता की दृष्टि से गिरावट आ रही है। आज इन परिस्थितियों में शिक्षण संस्थाओं को शास्त्रीय संगीत के महत्वपूर्ण महत्व को समझते हुए शिक्षण विधियों में सुधार लाकर योग्य शिक्षकों की नियुक्ति कर घरानेदार शिक्षकों द्वारा शिक्षण प्रदान कर दृश्य श्रव्य उपकरणों का यथाचित चयन कर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रवेश देकर पुनः इस सांस्कृतिक धरोहर की गरिमा को अक्षुण्य रखना है, ताकि शास्त्रीय संगीत का भविष्य उज्ज्वल हो सके। पृष्ठ संख्या 124। शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली संगीत की सामूहिक शिक्षा से लाभ तो अवश्य हुआ है, किंतु समस्याएं भी सामने उभर कर आई हैं। आज संगीत शिक्षण की सूक्ष्म व विशिष्ट अंगों पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना कि निर्धारित पाठ्यक्रम की औपचारिकता को पूरा करने पर दिया जाता है। सर्वसुलभ प्रवेश होने के कारण विद्यार्थियों में गुणवत्ता होने की अपेक्षा की जाती है और संख्या की वृद्धि पर ही अधिक बल दिया जाता है, जिसके अतिरिक्त प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा में निहित प्रेम भाव, श्रद्धा भाव, सेवा भाव, एकाग्रता, साधना, लगन आदि समाप्त हो गई है। सामूहिक शिक्षा में विद्यार्थी के लिए अपने कल्प में व्यक्तिगत प्रतिभा का समावेश करने का अवसर भी कम हो गया है। उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण एवं उसकी एक रूपता, निष्पक्ष परीक्षा का होना भी अति आवश्यक है। और भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे योग्य शिक्षकों का अभाव, सहायक वाद्य यंत्रों की कमी, शास्त्रीय पक्ष के शिक्षण में पाठ्यक्रमों की न्यूनता, घर में संगीत अभ्यास के लिए उपयुक्त वातावरण का उपलब्ध न हो पाना इत्यादि। शिक्षण के अतिरिक्त शिक्षकों की भी अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान भी खोजा जा सकता है। संगीत शिक्षा के वर्तमान पाठ्यक्रमों में शास्त्रीय संगीत के शिक्षण के साथ साथ विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा के आधार पर फिल्म संगीत, टेलीफिल्मों के लिए संगीत तैयार करना, समूह गानों में समूह नृत्यों के लिए संगीत रचना करना, विभिन्न वाद्यों के लिए संगीत रचना करना, विभिन्न वाद्यों पर संगीत प्रदान करना इत्यादि भी सिखाया जा सकता है, ताकि उपाधि प्राप्त करने के पश्चात उन्हें आर्थिक परिस्थितियों से जूझना न पड़े। शास्त्रीय संगीत के शिक्षण का प्रावधान बहुत ही कम शिक्षण संस्थाओं में है, विशेषतः महिला महाविद्यालयों में ही संगीत विशेष विषय का पठन पाठन हो रहा है। पुरुष महाविद्यालयों में शास्त्रीय संगीत के शिक्षण का प्रावधान नहीं है, जिस कारण अनेक प्रतिभाशाली युवक संगीत शिक्षण से वंचित रह जाते हैं। इसलिए पुरुष महाविद्यालयों में भी संगीत शिक्षण का विशेष प्रावधान होना चाहिए। संभव हो तो विद्यालयों के स्तर पर संगीत को एक अनिवार्य विषय बना देना चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने चाहिए जहां शिक्षकों के पूर्णतया विद्यालयीन शिक्षण के लिए तैयार किया जाए। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, स्पीक मैके, आईटीसी, संकल्प एवं अन्य छोटी छोटी संस्थाओं को संगीत सभाओं के आयोजन में केवल उच्च कोटि के कलाकारों को आमंत्रित कर अपने बजट की ही खानापूर्ति नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे प्रतिभाशाली युवक युवतियों जिनमें जीविका उपार्जन करने की सुलभता नहीं है तथा न ही कोई मंच की व्यवस्था है, ऐसे कलाकारों को ऐसी परिस्थितियों के कारण हतोत्साहित होना पड़ता है। इनका मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इन संस्थाओं को निष्पक्ष रहकर ऐसी कार्यशालाओं तथा शिविरों का आयोजन करना चाहिए जो कि ऐसे छोटे छोटे कस्बों तथा ग्रामों में रहने वाले लोगों के लिए हो, जहां पर कलाकार ऐश्वर्य की सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण जाना पसंद नहीं करते। पृष्ठ संख्या 125। उन शिविरों में उच्च कोटि के संगीतज्ञों को लाकर उनकी सीखने की इच्छाओं की पूर्ति के प्रयास करने चाहिए। सब लोग बड़े बड़े शहरों में जाकर धन व्यय कर कार्यक्रमों को सुनने के लिए उपस्थित नहीं हो सकते। ऐसा न हो कि शास्त्रीय संगीत एक विशेष वर्ग का ही संगीत होकर रह जाए। अंत में निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि संगीत की संस्थाएं आधुनिक समय के प्रचार प्रसार कर भी रही हैं और नहीं भी कर रही हैं। यदि शिक्षा का उद्देश्य देखा जाए तो ऐसा अधिक संभव नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ हद तक संगीत की संस्थाएं शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार कर रही हैं, किंतु अभी भी अधिकांश संस्थाएं ऐसी हैं जिनमें या तो शिक्षण गुण पूरे नहीं हैं या वाद्य यंत्र पूरे सही नहीं हैं। इससे विद्यार्थियों को विशेष असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षाविदों के सामान्य शिक्षा की प्रविधियों तथा सिद्धांतों का निर्धारण संभवतः संगीत को ध्यान में रखकर नहीं किया। वर्तमान काल में अब जबकि संगीत को अन्य विषयों के समान ही मान्यता प्राप्त है, तो शिक्षण के अनुसंधानीकरण आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि संगीत के सभी पक्षों के अध्ययन सामान्य शिक्षा की पद्धतियों तथा सिद्धांत के संदर्भ में किया जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक काल में संगीत का प्रचार प्रसार वैदिक काल के संगीत प्रचार से कम नहीं है। संगीतज्ञों को समाज में भी मान सम्मान प्रदान किया है। विषय की सुलभता है, किंतु फिर भी जनता की संगीत के प्रति उदासीनता दिखाई पड़ती है। इसका मुख्य कारण बढ़ती हुई पाश्चात्य सभ्यता की दुष्प्रभाव है और सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियां इसके प्रति उत्तरदायी हैं। अस्तु, संगीत स्तर को ऊंचा रखने के लिए संगीत शिक्षण की समस्याओं के प्रति सरकार को सचेत होना चाहिए और सांगीतिक संस्थाओं की समस्याओं के समाधान को निकालकर इन कुछ समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए।